मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एफईआईएस के आज 16 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं चार मित्रों का। और इन मित्रों के नाम हैं प्रशांत, मनोज वर्मा भुसावल महाराष्ट्र से, आशीष कुमार दिल्ली से, धीरज कुमार तेघरा बिहार से और हिमांशु अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से। ये वे चार साथी हैं जिन्होंने एकेडमी की 15 मार्च से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे करेंट अफेयर्स की तैयारी के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना मुझे मालूम पड़ रही है, हालांकि वो सीधे सीधे आपके परीक्षा में काम में आने की नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच को विस्तार देंगी और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स का पेपर है उसमें भी इससे थोड़ी मदद मिल सकती है, भले ही डायरेक्ट न मिले, और खासकर प्रवासी भारतीय की बढ़ती हुई ताकत के संदर्भ में। दोस्तों, अभी ब्रिटेन में चुनाव हुए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, और 650 जो निम्न सदन है जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं उसमें 650 सीटें होती हैं। इस चुनाव में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, यानी कि इससे पहले जो बोरिस जॉनसन वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी को बहुमत मिला है और वो फिर से सत्ता में आ गए हैं। आपको मालूम है कि ब्रिटेन में दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बारे में एक बात मैं यहां आपसे और बताना चाहूंगा कि जब आप अपना फ्रीडम मूवमेंट का इतिहास पढ़ेंगे तो फ्रीडम मूवमेंट का एक ऐसा दौर रहा है कि जब भी ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में होती थी तो लेबर पार्टी भारत के प्रति बड़ा सद्भाव रखती थी। मतलब हमारे जो भारतीय नेता जो उस समय स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल थे, उन्हें थोड़ी सी उम्मीद बनती थी कि अब ये जो ब्रिटेन है हमारी कुछ बातें सुन लेगा, कुछ बातें मान लेगा। यानी कि जो लेबर पार्टी है, आप यूं कह लीजिए कि एक उदार विचारों वाली पार्टी है। और कंजर्वेटिव तो देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो बहुत ही परंपरागत तरीके से चलने वाली पार्टी है। लेकिन इसमें अभी जो चुनाव हुए थे, इसमें जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जो बोरिस जॉनसन जिसके नेता थे, वो भारत के पक्ष में थे, भारत के समर्थन में थे। उन्होंने बकायदे जो भारत जो 370 भारत ने हटाया है उसका समर्थन किया कि नहीं, उन्होंने ठीक किया। जबकि दूसरी ओर जो लेबर पार्टी है वो एक तरह से भारत विरोधी पार्टी आप कह सकते हैं। देखिए, ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ के आसपास है और वहां की जो 2.5% आबादी है वो भारतीय है, यानी कि 2.5 कह लीजिए तो लगभग 15 लाख वहां भारतीय रह रहे हैं। और इससे पहले आपको ध्यान होगा कि एक बार के डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि दोनों पार्टियां कैसे अपने प्रचार के दौरान भारतीयों को अपने पक्ष में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं, और इस आप कह लीजिए कि मामले में कंजर्वेटिव पार्टी ज्यादा सफल रही। और इस चुनाव में 14 या 15 भारतीय भी हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में कह रहा हूं तो भारत की लोकसभा आप कह लीजिए, 15 जो भारतीय मूल के लोग हैं वो सांसद बन करके संसद में पहुंच गए हैं। अब आप देखिए कि कहेंगे कि उससे क्या हो गया, हमें थोड़ा सा इसे इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत देखना होगा, प्रवासी भारतीयों की ताकत के संदर्भ में देखना होगा। क्योंकि देखिए, हमारे अगर 15 सांसद पहुंचते हैं तो ये स्वाभाविक है कि भारत के प्रति उनका लगाव तो होगा, तो वो भारत के पक्ष को रख सकेंगे। अदरवाइज हमारे पक्ष को संसद के अंदर रखने वाला कौन है? ठीक है, संसद के बाहर देश में रखने के लिए वहां हमारे हाई कमिश्नर हैं और हमारे राजनेता हैं, लेकिन संसद के अंदर रखने के लिए कम से कम हमारे 15 प्रतिनिधि वहां पहुंच गए हैं, वो हमारा पक्ष तो रख सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और चुनाव में भी जिस तरह से भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करने की दोनों पार्टियों ने कोशिश की है वह भी यह दिखा रहा है कि ब्रिटेन में किस तरह से भारतीय प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं। दोस्तों, यहां एक बात और है, ब्रेग्जिट के बारे में आपने खूब सुना है कि किस तरह से ब्रिटेन में पहले चुनाव हुए थे, चुनाव क्या मतलब, जनमत संग्रह कहना चाहिए, ब्रिटेन में कराए गए थे और पूछा गया था कि हम जो यूरोपीय संघ है इसमें रहें या बाहर हो जाएं, तो ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, हमें इससे बाहर हो जाना चाहिए। और इसके बाद से ब्रिटेन में एक राजनीतिक संकट लगातार चल रहा है, और अब जो चुनाव हुए हैं इससे ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन ने यह फैसला कर दिया है वहां के लोगों ने कि हम यूरोपीय संघ से अलग होना चाहते हैं। अब एक प्रॉब्लम आ गई है, इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा वाच कीजिएगा, बस इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं कि जो स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड उसका एक एरिया है, उसका एक रीजन है, इसका एक क्षेत्र है। स्कॉटलैंड उस समय भी चाहता था कि हम यूरोपियन संघ में रहें, उसी के पक्ष में उसने वोट दिए थे कि हम रहें, और अब ब्रिटेन हो गया है कि अब वो बाहर होगा। तो स्कॉटलैंड अब ये बात कह रहा है कि हम तो इसमें बने रहना चाहते हैं, और स्कॉटलैंड में इस तरह का मूवमेंट भी चल रहा है कि हमें ब्रिटेन से अलग होना है, हम ब्रिटेन में नहीं रहना चाहते। तो अब जबकि ब्रिटेन ब्रेग्जिट से अलग होगा तो स्कॉटलैंड में वो मूवमेंट और बढ़ेगा कि हम ब्रिटेन से ही अलग होना चाहते हैं। तो जब भी इस तरह की खबरें आए, इस तरह की आंदोलन के बारे में आप सुने, तो थोड़ा सा आप उसे उस पर ध्यान दे दीजिएगा, बस इतना ही है। मित्रों, दूसरी खबर जो है वो मैड्रिड सम्मेलन को लेकर के है, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन जो मैड्रिड में चल रहा था वो समाप्त हो गया है। इसका क्या आउटकम हुआ, नतीजा क्या निकला? सच पूछे तो नतीजा कुछ भी नहीं निकला, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ ना निकला हो। जब 200 देशों के प्रतिनिधि वहां इकट्ठे होते हैं और पूरे विश्व में उनकी खबरें जाती हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, तो भले ही एग्जैक्ट नतीजा ना निकला हो, आउटकम कुछ ना आया हो, लेकिन उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो जो गतिरोध रहा है दो बिंदुओं पर सबसे ज्यादा रहा है, और ये वेल नोन है, हमेशा ये दो मामले अटक जाते हैं। देखिए, पहला मामला क्या है, वित्त प्रबंधन, जलवायु वित्त प्रबंधन। पूरे के पूरे आप इसमें जो दो पक्ष हैं, आप समझ लीजिए कि एक पक्ष विकसित देशों का हो जाता है, दूसरा पक्ष विकासशील देशों और गरीब देशों का हो जाता है। ये दूसरा ग्रुप हो गया है ना, इन दो भागों में बांट दीजिए। जो विकसित राष्ट्र हैं वो औद्योगिक रूप से समृद्ध राष्ट्र है, तो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वहीं हो रहा है, और ये जो पिछड़े हुए देश हैं, जो विकासशील देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, तो ये उतना कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश या दूसरा पक्ष है, वो लगातार ये मांग कर रहा है कि भाई आप हमें धन दीजिए ताकि हम अपने सिस्टम को बेहतर बना सकें, अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकें। और उसके लिए बकायदे एक हरित कोष भी बनाया गया है, और विकसित देश उसे टालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं। तो वित्त प्रबंधन का मामला है, इन विकासशील देशों के पास अब इतनी क्षमता नहीं है कि वो उतना खर्चा उठा सके, ये वित्त प्रबंधन का मामला। दूसरा है कार्बन बाजार को लेकर, ये कार्बन बाजार क्या है, इसको मैं बहुत ही आपको सामान्य तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, ये टेक्निकल भी है थोड़ा सा, लेकिन इसे सामान्य रूप में समझिए। जैसे बाजार में दूसरी चीजें बिकती हैं, उसी तरह से एक ऐसा बाजार है जिसमें कार्बन बिक रहा है। कार्बन का मतलब है CO2 कह लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिक रही है। अब ये कैसे बिक रही, इधर देख लीजिए, मान लीजिए कि 10 देश हैं और 10 देशों का कोटा फिक्स कर दिया गया है कि सभी देश 10-10% कार्बन उत्सर्जित करेंगे, मान लीजिए मोटे तौर पर। अब उसमें कोई देश 15% कर रहा है, कोई देश 8% कर रहा है, कोई देश 5% कर रहा है, क्योंकि यहां औद्योगिक विकास हुआ नहीं है, तो ये ज्यादा कार्बन उत्सर्जित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उद्योग नहीं लगे, इनके पास इतनी गाड़ियां नहीं है। तो अब आप देखिए कि जो जिसका कोटा 10% का है उसके पास 5%, चूंकि वो उत्पादित कर रहा है तो 5% उसके पास सरप्लस है, 5% नहीं कर रहा है ना, और एक देश है जो 15% कर रहा है, उसका भी कोटा 10% का है, तो 5% वो ज्यादा कर रहा है, तो अब उसकी भरपाई कैसे हो? मेरा अब आप समझ गए होंगे कि जो कम कर रहा है उसको आप पैसा दे दीजिए, क्षतिपूर्ति हो गई उसकी, तो उसको ये फायदा हो गया, वो प्रोत्साहित भी होगा कि भैया मैं कम कार्बन उत्सर्जित करूं, और आपने उसको पैसा दे करके अपनी चीजों को जस्टिफाई कर दिया, और हमारे पर्यावरण में जो कार्बन का एक जो लेवल होना चाहिए, जो प्रतिशत होना चाहिए, वो ठीक ठाक रहेगा। ये मोटे तौर पर मैंने समझाया है। अब ये मत समझिएगा कि सभी का बराबर प्रतिशत ही कार्बन उत्सर्जन को लेकर के होता है, उसके अपने फार्मूले हैं, उस पर मत जाइएगा। मैं केवल बाजार की बात कर रहा हूं, कार्बन बाजार का क्या अर्थ है, इस पर भी सहमति नहीं बनी है। तो कुल मिलाकर के जो मामला है वो अभी थोड़ा सा फंस गया है, आप कह लीजिए। देखते हैं अब अगला जो सम्मेलन है वो ग्लासगो में होगा और फिर क्या बातें बनती है, लेकिन कम से कम बातचीत हो रही है, लोग इसके प्रति इतने संवेदनशील हैं, यही एक बहुत अच्छी बात है, आप कह लीजिए बहुत अच्छा संकेत है। डेफिनेटली रास्ता कुछ ना कुछ निकलेगा ही। मित्रों, न्यूज में आपने पढ़ा कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट पूर्व परामर्श शुरू कर दिया है। 1 फरवरी के को सरकार ने कहा है कि शायद वो बजट प्रस्तुत कर देगी। तो अब हमारे जो वित्त मंत्री हैं, देखिए हमेशा बजट पूर्व परामर्श होता है, मतलब आप ये मत समझिए कि बजट बिल्कुल एक कमरे में बैठ करके बना दिया जाता है। जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं उनसे बकायदे हमारे वित्त मंत्री परामर्श करती हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और सुनने के बाद फिर उस आधार पर बजट बनाने की कोशिश की जाती है। तो आपने न्यूज में भी सुना कि वो उद्योग के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, किसानों के प्रतिनिधियों से मिलेंगी, अर्थशास्त्रियों से, स्टार्टअप वाले जो हैं, जो कैपिटल मार्केट वाले हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से वो मिलेंगी, उनकी बातें सुनेंगी और उन्हें नोट करके और फिर बजट में ज्यादातर समस्याओं का निदान ढूंढने की कोशिश करेंगी। तो ये हमारे बजट की बिल्कुल आरंभिक स्थिति है जो बजट बनाया जाता है उसकी। फ्रेंड्स, सैटरडे को मैंने आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था और उसका संबंध इस बात से था कि इस बार साउथ अफ्रीका की जो एक श्वेत सुंदरी हैं जिनका नाम है जोजी बिनी तुंजी, वो मिस यूनिवर्स बनी हैं। साउथ अफ्रीका की अश्वेत हैं वो। ये एक फैक्ट है, मुझे लगता है कि आपके काम आ सकता है और खासकर निबंध में काम आ सकता है। दो रूपों में, एक तो यह है कि सुंदरता का संबंध केवल कलर से नहीं है कि जो गोरा होगा, जो गोरी होगी, वही सुंदर और वही स्मार्ट होगा, यह धारणा यहां बदल दी है। दूसरा यह है कि किस तरीके से अब जो विश्व की चेतना है वो कहीं ना कहीं बदल रही है और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इस रूप में आप इस तथ्य का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब मैं मुख्य विषय पर थोड़ी सी बातें करना चाह रहा हूं और वह है करंट अफेयर्स की तैयारी। आप लोगों से मैंने कहा हुआ है कि खासकर मंडे को कोशिश मेरी रहेगी कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में आपको कुछ गाइडलाइंस दे सकूं, उसी के तहत मैंने आज ये विषय चुना है। इस बात से आप सब बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ा रोल अगर किसी एक सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट ही मैं यहां इसे कह रहा हूं, तो वो है करंट अफेयर्स। सबसे बड़ी भूमिका करंट अफेयर्स की हो गई है। करंट अफेयर्स की तैयारी आप करेंगे कैसे? मित्रों, इसके स्टेज को आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात, करंट अफेयर्स की तैयारी आप अगर सीधे ही न्यूज, टीवी चैनल्स के न्यूज, अखबारों से करना शुरू कर देंगे तो शायद बात बनेगी नहीं और आप बहुत जल्दी ऊब जाएंगे, क्योंकि वहां आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दो चीजें समझ में नहीं आएंगी। पहला तो यह है कि इसमें से हम क्या अपने लिए जरूरी समझे, क्या नहीं समझे, चयन का संकट होगा। दूसरा, चूंकि आप उन तथ्यों के बैकग्राउंड को जानते ही नहीं है, इसलिए पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भी तो बहुत थोड़ा मोड़ा पड़ेगा, उससे बात नहीं बनेगी। तो देखिए, इसकी तैयारी के स्टेजेस क्या होते हैं। नो डाउट कि जिस दिन आप सोचते हैं कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, अखबार और न्यूज से आपको जुड़ जाना चाहिए। जो करंट अफेयर्स को सुनने और पढ़ने की जो स्टेज होती है वो तीन होती हैं। नंबर वन, आपको रेडियो की न्यूज सुननी चाहिए जो रात में 8:45 और 9:45 तक आती, हिंदी और अंग्रेजी में, जिसमें भी आप सुनना चाहें। फिर टीवी न्यूज, मैं स्पेशली टीवी न्यूज की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो 8:00 से 9:00 तक और फिर 9:00 से 10:00 तक आता है और उसमें फिर एक डिस्कशन भी होता है, ये आपको सुनने ही चाहिए। दो, और इसके बाद सुबह अखबार, ये इससे आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। और शुरू में आपको समझ में नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, निरस्ता का बोध हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, धीरे 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 चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन इससे पहले बहुत जरूरी है कि आप दो काम कर लें। पहला, सिलेबस बहुत अच्छे से आपको मालूम हो, क्योंकि तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि ये मेरे काम का है, ये मेरे सिलेबस का है, ये करंट अफेयर्स। और दूसरा, केवल सिलेबस ही नहीं बल्कि सिलेबस के आधार पर आपकी प्रिपरेशन भी हो जानी चाहिए, जो मुझे लगता है कि एक साल की मांग करता है। जब आप सिलेबस को समझ लेंगे और सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी कर लेंगे सही मायने में, तब वहां से करंट अफेयर्स की रियल प्रिपरेशन शुरू होगी, तब जाके शुरू होगी। लेकिन क्या आपको तब से ही शुरू करना चाहिए? नॉट एट ऑल। अब जब जिस दिन से आप ये फैसला करते हैं कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, न्यूज वगैरह सुनना शुरू कर दीजिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा। आप देखेंगे कि जबकि आपने पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस को समझ लिया है, तो जो आपने इससे पहले करंट अफेयर्स पर सुना था, पढ़ा था, देखा था, वो आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे। अब बहुत अधिक मदद करेंगे, आप बहुत अधिक एम्पावर्ड हो चुके हैं। इसलिए यह मत समझिएगा कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही चलो हम न्यूज सुनना शुरू करें, नॉट एट ऑल, आपको पहले ही उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो मित्रों, करंट अफेयर्स की तैयारी के बारे में ये थोड़ी सी बातें। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: नरेंद्र सिंह नेताम रीवा मध्य प्रदेश से, योगिता दिल्ली से, संध्या खन्ना बदरवास मध्य प्रदेश से, आशीष श्रीवास्तव गोरखपुर विश्वविद्यालय से, रोहित तिवारी, अहमद मुंतकीम और अवनीश राज, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।